ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने ये गीत सुना कि समय का पंछी उड़ता जाए, और सचमुच हर रोज व्यक्ति अपने जीवन में यही सोचता है कि मैं कैसे समय का संपूर्ण सदुपयोग करूं। परंतु जब एक एक दिन समय निकलता जाता है तब कई बार व्यक्ति को अफसोस भी होता है कि जीवन के अंदर कैसे समय बीतता जा रहा है, और जितना फायदा लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। पिछले 3 दिनों में आपने बहुत सुंदर बातें सुनी, लेकिन अभी का ये विषय जो है वह है काल चक्र का गुह्य रहस्य, या ये समय का चक्र कैसे चलता है। संसार में 2 बातों की गुह्य गति मानी गई है। एक समय की गुह्य गति है, दूसरी कर्मों की गुह्य गति है। और जब तक ये दोनों गुह्य गति को नहीं समझ पाते हैं तब तक जीवन में कई उलझन भरे प्रश्न बने रहते हैं। खास करके एक प्रश्न जरूर मन के अंदर होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कोई घटना घटती है, कोई बात आती है, तो लोग अक्सर यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये प्रश्न आता है और जब उसका जवाब नहीं मिलता है तो जीवन में कितना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, तनाव बढ़ जाता है। और उसके लिए ये समय की गुह्य गति को जानना जरूरी है। समय के लिए इस दुनिया में बहुत कुछ कहा हुआ है। यही कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। और वास्तव में समय हमसे, समय प्रति समय एक प्रतिउत्तर की मांग करता है। जब भी कोई घटना, समस्या जीवन में आती है तो ये एक प्रकार से समय की मांग है कि मैं अब इस घटना को क्या प्रतिउत्तर दूं। और अगर सही प्रतिउत्तर दे, उसके लिए समय संकेत भी देता है। अगर उस संकेत को समझ लिया गया और उस अनुसार प्रतिउत्तर दिया तो समय जीवन में हमें आगे बढ़ा देता है। परंतु अगर समय के संकेत को समझा नहीं और उसके विपरीत दिशा में चले तो समय बड़ा कठोर हो जाता है, अच्छे अच्छे को पछाड़ना आरंभ कर देता है। तभी जब किसी को कोई बात के लिए सुधरने के लिए कहा जाता और फिर भी अगर वो सुधरता नहीं है तो लोग क्या कहते हैं। समय की पछाड़े खाएगा तो अपने आप सुधर जाएगा। भावार्थ ये कि समय कभी कभी बहुत बड़ा शिक्षक बन जाता है पाठ पढ़ाने के लिए, तो समय पाठ पढ़ाए और हम पढ़े उसको समझदार कहेंगे। समझदार उसे कहेंगे जो समय से पहले अपने आप को परिवर्तन कर ले। इसलिए कहा कि दुनिया में जो कहावत है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। अगर समय के हिसाब से परिवर्तन को नहीं अपनाया गया तो समय मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा, क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं, समय की मजबूरी है, परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। इसलिए समय क्या कह रहा है? कहा जाता कि काल चक्र की अपनी एक कहानी है। समय ने बहुत कुछ देखा है और उसकी जो कहानी है उसको जो समझ लेता है वो जीवन में कभी उदास नहीं होता, हर रहस्य को समझते हुए आगे बढ़ता है। तो ये समय की कहानी क्या है? क्योंकि अगर इसको समझा नहीं तो समय का पंछी तो उड़ता जाता है, वो हाथ कभी किसी के नहीं आना है, और पश्चाताप के सिवाय फिर कुछ नहीं बचता है। समय परिवर्तनशील है और इसलिए इस संसार के अंदर समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। तब कहा जाता कि परिवर्तन ये कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता आया है और होता रहेगा, लेकिन ये समय क्या कह रहा है, क्या संकेत दे रहा है? समय को कहा गया है चक्र, काल चक्र, समय का चक्र, और ये समय के चक्र का कनेक्शन हमारे जीवन चक्र के साथ है। समय के चक्र के अंदर जितने भी बने हुए चक्र है वो भी नित्य चलते रहते हैं, कोई चक्र बंद नहीं होता है। दिन और रात का चक्र देखो नित्य चलता है, ऋतुओं का चक्र देखो नित्य चलता रहता है, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र देखो वो भी नित्य चलता है। कुदरत की साइकिल को देखेंगे तो पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर नदियों के द्वारा वो पानी समुद्र में मिल जाता है, ये चक्र भी नित्य चलता रहता है। इसी तरह ये काल चक्र भी नित्य चलता रहता है। इस चक्र की आदि और अंत नहीं है, चक्र माना ही जो नित्य चलता है। कब ये चक्र शुरू हुआ पता ही नहीं है। दिन और रात का चक्र ले लो, कब शुरू हुआ? रात को 12 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, कब शुरू हुआ पता ही नहीं। हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये चक्र रात को 12 बजे ही शुरू हुआ था। हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र को ले लो, चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम रात्रि। इसी तरह ऋतुओं के चक्र को देखो, उसमें भी चार अवस्था है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र में भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध। इसी तरह ये काल चक्र में भी चार अवस्था है, जिसको कहा जाता है सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आएगा। कई लोग सोचते इतना घोर पापाचार का युग सतयुग में कैसे बदलेगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलने का। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। तो जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदल जाती है, कुदरत की रचना में ऐसी सेटिंग है जो धीरे धीरे समय परिवर्तन हो जाता है और सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। इसी तरह घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में जो परिवर्तन होती है, ये समय का चक्र उसको परिवर्तन करता है, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको परिवर्तन करना। लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है जिसमें उसको वो साइकिल कंप्लीट करना होता है। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में चक्र कंप्लीट हो जाता है। ऋतुओं के चक्र की अवधि है 1 साल, उसी में कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल, परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो लोगों के मन में कई प्रश्न आ जाते हैं, ये 5000 कहाँ से आया, किसने कहा, कहाँ लिखा हुआ है, क्या सबूत है, शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल का लिखा है, आप 5000 साल का पूरा चक्र कैसे कहते हो। मैं उन लोगों से एक ही सवाल पूछती हूँ कि लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है? है कोई सबूत? कैसे मान लिया कि लाखों साल का एक एक युग है बिना सबूत के, जो 5000 का सबूत मांगते हैं? वैसे देखा जाए तो सबूत किसी चीज का है, 24 घंटे किस आधार पर लाए गए, 60 सेकंड की एक मिनट बनी, 60 मिनट का एक घंटा बना, और ऐसे दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था? चलता था, नहीं चलता था। 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था? चलता ही था, घंटे कम हो जाते थे। वो दिन और रात का चक्र तो उतना ही रहना था ना, चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 20 घंटे में बांटो या 25 घंटे में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था। तो 24 ही क्यों, कभी प्रश्न पूछा? नहीं, स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को उसी 24 घंटे के हिसाब से ढाल दिया। साल का चक्र कितने दिन का है? 365 दिन का। किसने कहा? विज्ञान ने कहा कि 365 दिन लगते हैं पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, और हमने स्वीकार कर लिया। कभी कोई सबूत मांगा कि भाई सबूत दो के 365 दिन ही लगते हैं? नहीं, विज्ञान ने कहा ना, इसलिए स्वीकार कर लिया। और इस तरह पूरा इंग्लिश कैलेंडर बन गया 12 मास का, और दुनिया भर के लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। परंतु अगर हिंदू कैलेंडर को देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी तो एक साइंस पर ही बना है, और उस जमाने का साइंस, जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था, शून्य दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब जाकर के मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। अगर भारत जीरो नहीं देता था तो मॉडर्न साइंस भी विकसित कैसे होता था? और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 3 साल के बाद अगर अधिक मास आता है तो साल में कितने दिन होते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते? 354 दिन, 354 डेज। अब 354 सही या 365 सही, कौन सा सही? दोनों कैलेंडर एक विज्ञान पर बना है। कभी हमने ये नहीं कहा कि मॉडर्न साइंस ने कहा 365 दिन, इसलिए हिंदू कैलेंडर को भी फाड़ के फेंक दो, और ये भी नहीं कहा कि हिंदू कैलेंडर ने कहा 354 दिन, इसलिए इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं, दोनों कैलेंडर भारतवासी लेके चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर, और अपना त्योहार मुहूर्त जो कुछ निकालना है वो हिंदू कैलेंडर। और हिंदू कैलेंडर फिर भी इतना एक्यूरेट है कि जब पूर्णमासी या अमावस्या होती है तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है ज्वारपाटा के रूप में। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो बताते हैं एक्यूरेट टाइम सहित होता है। इंग्लिश कैलेंडर पर कोई प्रेडिक्शन नहीं, तो कौन सा सही है? हिंदू कैलेंडर सही ना? फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? इंग्लिश कैलेंडर को दी। तो कभी हमने सबूत मांगा कि भाई इतना दिन का डिफरेंस है तो सही कौन सा है? 24 घंटा किस आधार पर आया ये कोई प्रूफ नहीं है। 365 सही है, 354 सही, उसका कोई प्रूफ नहीं है। लाखों साल का एक एक युग कहा, उसका कोई प्रूफ नहीं है। 5000 का प्रूफ चाहिए। वैसे 5000 साल का प्रूफ है हमारे पास, अगर उसको स्वीकार कर सकते हैं तो इसको भी करके देखिए। हो सकता है कि जीवन की कई गुत्थियां सुलझाने में सहज हो जाए 5000 के हिसाब से। तो 5000 का सबूत क्या है? हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? कितने साल हुए महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो अभी घर घर में क्या चलता है, महाभारत चलता है या नहीं चलता है? तो हो गया ना 5000 साल, महाभारत काल पुनः आ गया तो हो गया 5000 साल। महाभारत में जो पात्रों का वर्णन किया गया है, शकुनी जैसे पात्र, आज के समाज में शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं। महाभारत काल में तो एक ही शकुनी था, लेकिन आज की दुनिया में हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा। दुर्योधन जैसे पात्र, दुर्योधन जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में देखने को मिलते हैं। दुशासन जैसे पात्र भी है, और उसके बावजूद माता पिता पुत्र मोह में अंधे, ऐसे माता पिता भी है या नहीं है जो अपने बच्चों को कुछ नहीं कह पाते? तो महाभारत के सारे पात्र तो अभी मौजूद है, तो 5000 हो गया ना। श्रीमद् भगवत गीता के हिसाब से जब 4th अध्याय में भगवान ने वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं पुनः आता हूँ। जो धर्म ग्लानी के लक्षण शास्त्रों में दर्शाए गए हैं वो इस समय समाज में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते? तो हो गया 5000 साल। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है, और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है। तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर, पिछले साल मायन कैलेंडर का बहुत चला टीवी के ऊपर, है ना? उन्होंने तो डेट भी दे दिया था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। कई बार कई लोग हमसे भी आते थे पूछने के लिए, आप क्या समझते हो 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएंगी? हम कहते थे या उसके पहले खत्म होंगी या बाद में खत्म होंगी, उस दिन तो कुछ नहीं होने वाला है। कैसे कह सकते हैं? हम यही कहते हैं, अगर मनुष्य के कहने के हिसाब से ये दुनिया चलने लगे तो भगवान की वैल्यू ही क्या रहेगी, है कि नहीं? भगवान की वैल्यू क्या रहेगी फिर? इसलिए 21 दिसंबर 2012 को कुछ नहीं हो। पिछले साल मेरा अमेरिका जाना हुआ था, वहां से हम मेक्सिको गए थे, और मेक्सिको में उसी स्थान पर जाना हुआ जहां ये मायन खंडर है। तो जो गाइड हमें दिखा रहा था सारा मायन खंडर और कहां क्या होता था सारा दिखा रहा था, वो खुद भी मायन वंशज का था। वो सारा अपने संस्कृति के बारे में सारा बता रहा था। उस वक्त हमने उसको पूछा कि भाई आप लोग ने तो डेट भी दे दिया कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएंगी। तब उसने बताया कि हमने ये नहीं कहा है कि 21 दिसंबर 2012 तक दुनिया खत्म हो जाएंगी, हमने कहा हमारे भारत में तो टीवी पर बहुत आता है, तो कहा हमने ऐसा नहीं कहा है। तब हमने पूछा फिर आपने क्या कहा है, तो कहा हमने ये कहा है कि 21 दिसंबर 2012 को हमारा 5000 साल का कैलेंडर पूरा होता है और 22 दिसंबर 2012 से हमारा नया कैलेंडर शुरू होगा। लेकिन ये तो फिल्म बनाने वालों ने इतना हाईलाइट कर दिया उस बात को। हाँ, उस समय हमने ये जरूर कहा था कि उसके पहले दुनिया में काफी कुछ परिवर्तन होगा, तो उन्होंने इतना हाईलाइट कर दिया कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हमने ये तो कहा ही नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। 5000 साल का हमारा कैलेंडर पूरा हो रहा है, तो 5000 साल का वर्णन हर संस्कृति में देखने को मिलेगा। लाखों साल का एक एक युग है, ऐसा किसी संस्कृति में नहीं है। इसलिए कहा कि 5000 साल का चक्र है। लेकिन तब फिर कई बार प्रश्न पूछने वाले पूछते, फिर आर्कियोलॉजी वाले जो ये कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है, वो सही है कि गलत है? वो भी सही है। जैसे दिन और रात का चक्र, एक चक्र 24 घंटे का है, और ऐसे चक्र कितनी बार घूम चुके हम 2013 साल से गिनती करते आए, लेकिन उसके पहले भी दिन और रात के चक्र चलते थे या नहीं चलते थे? चलते ही थे, हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ, चलते तो थे ना। ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है, अनगिनत बार। तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, तो पत्थर मिलेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो वो भी सही है कि पृथ्वी करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन ये भी सही है कि इस पृथ्वी के ऊपर एक काल चक्र 5000 साल का है, और ऐसे 5000 साल का काल चक्र अनेक बार इस पृथ्वी के ऊपर घूम चुका है। इस काल चक्र को दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी से भी पूछा जाए कि ये स्वास्तिका का अर्थ क्या है, तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे एक शुभ की निशानी है, हमारे पूर्वज करते आए इसलिए हमें करना है। कैसे ये शुभ की निशानी है, क्यों निकालना चाहिए ये पता नहीं। स्वास्तिक का शब्द बना है संस्कृत के सुअस्ति शब्द से। सुअस्ति, सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। माना ये काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है, इसकी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में ये बात आती है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, तुम चिंता क्यों करते। गीता के सार में ये बात आती है। कईयों ने अपने घरों में लगाया होगा, लेकिन कितना इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जीवन में होता है कि तीनों घड़ी अच्छी है, जो बीत चुकी वो भी अच्छी है, जो चल रही है वो भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है। तुम निश्चिंत रहो। लेकिन फिर भी कोई कोई घटना को देख करके हम बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, है ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और दुखी हो जाते हैं। जबकि गीता के सार में ये बात कही कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, वास्तव में जब कोई कहते हैं कि भाई कोई कोई घटना को देख करके बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा कैसे समझा जाए। इसीलिए हर शुभ कार्य के ऊपर वो स्वास्तिका का निशान निकालते हैं और उसको कहते हैं श्री गणेश। और वो निकाल करके क्यों निकालते हैं, माना ये डाउट नहीं रखो कि पता नहीं ये घड़ी अच्छी है या नहीं है। स्वास्तिका निकाल दिया, ये घड़ी भी शुभ है, तुम निश्चिंत रहो, विचार नहीं चलाओ, नेगेटिव विचार नहीं चलाओ। इसीलिए स्वास्तिका निकाल करके फिर क्या करते, कलश रखते और कलश के ऊपर नारियल रखते। अब कलश स्वास्तिका नारियल और फिर कहते श्री गणेश, इसका भाव क्या है? यानी ये घड़ी भी शुभ है। कलश रखा ज्ञान का कलश कहा जाता है कि ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर तुम देखोगे तो ये घड़ी भी शुभ महसूस होगी। और फिर उसके ऊपर नारियल रखा, नारियल को कहा जाता श्रीफल। श्रीफल माना ज्ञान युक्त बुद्धि से इस समय में तुम कर्म करोगे तो श्रेष्ठ फल की ही प्राप्ति होगी, इसलिए श्रीफल। और ये विधि करते हुए कहेंगे अब श्री गणेश करो, यानी आरंभ करो, अब शुरू करो। तो ये घड़ी भी अच्छी है। इसीलिए वो राजा अकबर और बीरबल की कहानी याद आती है कि एक बार अकबर राजा और बीरबल दोनों शिकार खेलने गए। अब शिकार खेलते खेलते राजा की अंगुली कट गई, तो बीरबल तो ज्ञानी था, उसने सहज भाव से कह दिया चलो जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया, मेरा खून निकल रहा है, तुम कहता अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, तुम्हें सहानुभूति नहीं है। बीरबल ने कहा नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को और गुस्सा आया, जो सिपाही थे उन सबको कहा इनको ले जाओ, बंदी बना दो और कारागृह में डाल दो। वो सिपाही लोग तो ले गए बीरबल को, जाते जाते भी बीरबल ने कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ, है ना। राजा को और गुस्सा आया, लेकिन फिर आगे चला गया, अकेला हो गया, सिपाहियों को तो भेज दिया। अब शिकार खेलते खेलते और ही जंगल में जाता गया अंदर, कुछ जंगली लोग थे, वो नर बलि ढूंढ रहे थे, उनको देवी को प्रसन्न करना था तो नर बलि चढ़ानी थी, तो कोई हुष्ट पुष्ट व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। जब राजा को देखा, सादे वेश में था तो उनको क्या मालूम ये राजा है, उनका तो अपना कानून होता है जंगल में, तो पकड़ लिया उसको। अब राजा अकबर कहे भाई मैं राजा हूं, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं, भाई उनको तो नर बलि चाहिए थी। बड़ी खुशी से बाजा बजाते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए उसको ले गए, और ले जाने के बाद अब तो राजा ने सोचा अब तो उन बलि चढ़ जाना है, बड़ा उदास था। जब बलि को तैयार किया गया, देवी के आगे ले जाने लगे, तो पंडित ने देखा कि अरे इसकी अंगुली कटी हुई है, ये खंडित बलि है, खंडित बलि नहीं चढ़ सकती है, पूर्ण बलि चाहिए, उसको छोड़ दिया। तब उसको रियलाइज हुआ कि बीरबल ने जो कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, आज अंगुली कटी थी तो जान बची, अगर अंगुली नहीं कटती थी तो जान बलि चढ़ जाना था। वापस राजमहल आकर के बीरबल को छुड़वा दिया, अब तेरी बात का मर्म मुझे समझ में आया कि क्यों तुमने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, सचमुच ये अंगुली कटी तो मेरी जान बच गई। बीरबल ने कहा लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्या कैसे अच्छा हुआ तुमको तो मैंने सजा दे दी, कारागृह में डाल दिया, इतना कष्ट दिया, फिर अच्छा कैसे हुआ? कहा वही तो अच्छा था, नहीं तो आपके साथ मैं ही होता था, है ना? आप तो बच जाते थे, मेरी बलि चढ़ जानी थी, मैं पूर्ण बलि जो था। तो आपको गुस्सा आया ये भी कल्याणकारी, मुझे सजा दिया वो भी कल्याणकारी। जो होता है अच्छा ही होता है, बुरा कुछ है ही नहीं। बुरा कहना ये हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है या हमारी बुद्धि की परिपक्वता की कमी है, इसीलिए हम कहते हैं हाय बहुत बुरा हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो अपशुकन हो गया। अरे स्वास्तिका निकाल दिया, सुअस्ति, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत हो जाओ, शुकन अपशुकन में जाओ ही नहीं। ये घड़ी भी अच्छी है, इसीलिए स्वास्तिका निकाल दिया, कलश रख दिया कि ज्ञान युक्त बुद्धि से सोचो। और ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर अच्छा कर्म करोगे तो श्री फल, श्रेष्ठ फल मिलना ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो ये है स्वास्तिका का मतलब, ठीक है ना? इसीलिए हर शुभ कार्य पर लगाया जाता है। लेकिन तब भी कई बार कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कोई 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 दृश्य तो बहुत बुरे होते, उसको अच्छा कैसे समझे। मुझे याद आता है मेरा एक कार्यक्रम बॉम्बे में था, कार्यक्रम मेरा दोपहर को था 3 से 5, शाम का समय मेरा फ्री था। तो एक परिवार वाले आकर मुझे कहने लगे कि बहन जी अगर शाम को फ्री हो तो हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हम आपका एक प्रवचन रखना चाहते हैं। तो रखे, हमने कहा शाम को तुम फ्री है भले आप रखो। बड़े खुश होकर के वो गए, उन्होंने कहा 7 बजे का हम टाइम सबको देते हैं, आप 7 बजे पहुंच जाएंगे। हमने कहा पहुंच जाएंगे। अब जहां हमारा कार्यक्रम था 3 से 5, कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर हुए, कुछ लोगों से मिलना करना हुआ, तो 5:30-6 हो गए। अब 6:45 जब निकलने लगे तो बहन जो हमारे साथ में थी वो कहने लगी, बहन जी अभी अगर हम सेंटर जाएंगे और उसके बाद उनके घर जाएंगे तो एक तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है, और अगर कहीं ट्रैफिक जाम में अटक गए तो 7 बजे भी पहुंच नहीं सकेंगे क्योंकि दूर है घर। तो हमने कहा फिर क्या करना चाहिए? कहा यहाँ से अगर सीधा चले तो? हमने पूछा कितना दूर है यहाँ से? कहा 10 मिनट। मैंने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, अगर जल्दी भी पहुंच गए ना तो वो माइंड नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, खुशी होंगी उनको। हमने कहा चलो। अब पहुंच गए 10 मिनट के अंदर, 6 बजे हम पहुंच गए। अब उन्होंने इतना जल्दी हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 घंटा बिफोर आ जाएंगे। तो जब हम पहुंचे तो सारा परिवार बैठ के टीवी देख रहा था, कोई सीरियल चल रही थी उनकी। तो जैसे ही हमें देखा तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया टीवी बंद कर दो। बच्चों ने इशारा किया हम बंद करने वाले नहीं है, माता पिता का चलता कमी है आजकल तो बच्चों के आगे। फिर माता पिता ने कहा अच्छा वॉल्यूम स्लो करो, तो बच्चों ने मान लिया वॉल्यूम स्लो कर दिया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनकी टीवी चल रही थी, उनका वॉल्यूम तो स्लो कराया, लेकिन यहाँ माता पिता हमसे बात करने लगे कैसा रहा प्रोग्राम क्या हुआ। अब जरूर है बच्चों को डिस्टर्ब तो होगा। तो उनका जो सबसे छोटा बच्चा था 12-13 साल का होगा, वो आकर मुझे कहने लगा कि दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आप थोड़ा समय साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना? बड़ी अच्छी भाषा में उसने मुझे कह दिया कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आई, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब साइलेंस में बैठना था तो क्या करते। तो मैंने सोचा कि फिर वो बच्चा मुझे कहने लगा कि ऐसा है कि ये सीरियल बहुत अच्छी है और आज उसका लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड में कई सस्पेंस खुलने वाले हैं, इसलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते। हमने कहा कोई बात नहीं। अब साइलेंस में बैठना था तो क्या करते, तो मैंने सोचा देखे तो सही क्या सस्पेंस होता है। अब जब हम देखने लगे तो एक दृश्य का दूसरे दृश्य से कोई संबंध नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं, कहानी क्या चल रही थी ये भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पता नहीं बीच बीच में उसका क्या सस्पेंस खुलता था। बड़े खुश होते थे, ताली बजाते थे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा दिखाया। अब क्या अच्छा दिखाया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लास्ट में जब पूरा हुआ तो भी कोई खास बात नहीं थी, पूरा हो गया, लेकिन वो लोग बड़े खुश थे कि बहुत अच्छा दिखाया। तो क्या अच्छा था, हमें तो समझ में नहीं आया। आखिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे से बुलाकर पूछा इसमें क्या अच्छा था, कहानी क्या थी समझ में नहीं आई, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से भी कोई कनेक्शन ही नहीं था, तो क्या अच्छा लगा। तो बच्चा मुझे कहने लगा कि दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे थे ना, तो हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और इसलिए हम पूरी कहानी को समझ रहे थे। इतना बोलकर वो तो चला गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया और मैं सोचने लगी कि ये काल चक्र भी 5000 साल का है और ये 5000 साल में हमारे कितने जन्म हैं और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। अब ये अंतिम कलयुग का जन्म है, अब ये अंतिम जन्म में तो सारे सस्पेंस ही होगा, कहानी क्या होगी वो भी मालूम नहीं, जीवन में भी एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं है, है ना? लेकिन ये दृश्य का कनेक्शन भी कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो होगा या नहीं होगा। जैसे वो बच्चों ने कहा कि हमने सारे एपिसोड देखे इसलिए हमें कनेक्शन समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने किसी एपिसोड को नहीं देखा इसलिए मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ठीक इसी तरह हमें भी एक भी एपिसोड याद नहीं है और यही एक एपिसोड है जिसको हम जानते हैं। अब इस जीवन में भी जो घटनाएं घटती है, जो होनी होती है, उसका कनेक्शन किसी न किसी एपिसोड के साथ तो है, लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए हम बड़े दुखी हो जाते। अगर हमें सारे एपिसोड याद रहते थे तो हम भी क्या कहते थे, हम भी शायद यही कहते थे उन बच्चों की तरह, वाह बहुत अच्छा दिखाया बहुत अच्छा दिखाया, यही कहते थे ना। बुरा कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जरूर समझना है कि किसी न किसी एपिसोड के साथ इसका कनेक्शन जरूर है। इसीलिए कहा ये काल चक्र सदा सुअस्ति, सदा शुभ है। अब ये काल चक्र की कहानी क्या है, जैसे कई बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले एक राजा था एक रानी थी, है ना, और राजकुमारी थी आदि आदि बताते हैं हम कहानी में। परमात्मा भी हमें ये कहानी सुनाते हैं, काल चक्र की कहानी, कि ये कहानी कैसे सदा शुभ है। ये काल चक्र कब शुरू हुआ ये तो पता नहीं, जैसे दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन दिन और रात के चक्र का पहला पहर सुबह को माना जाता है, फ्रेश कि किसी तरह ये काल चक्र कब शुरू हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन इसका भी पहला पहर सतयुग को माना जाता है, सत्यता का युग, जहां संपूर्ण सत्यता थी, जहां ये काल चक्र का जो हाथ है राइट हैंड साइड से शुरू होता है, राइट हैंड माना ही राइटियस कर्म करने लिए, राइटियसनेस। इसका पोजीशन है आशीर्वाद, यानी इस दुनिया के अंदर हर आत्मा ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की हुई स्थिति में थी, संपूर्ण सत्यता का समय था। इस दुनिया को कहा ही जाता है सूर्य वंश, कि जैसे सूर्य की कला कम जास्ती नहीं होती है, वैसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है। हर आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में होती है। इस दुनिया के लिए बाइबल में एक बहुत सुंदर लाइन आती है जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि जब ये दुनिया का पहला पहर था, इस काल चक्र का पहला पहर था, तो उस समय ये दुनिया कैसी थी। तो जेनेसिस चैप्टर 1 में यही बात लिखी है कि दुनिया का जब पहला पहर था इस काल चक्र का, तब परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने मनुष्य को अपनी कृति में बनाया था, क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था और कलयुग के अंदर मनुष्य थे, तो कलयुग के मनुष्य को ही अपनी कृति में बनाया। इसलिए गुरु नानक देव ने भी बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, ईश्वर को मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगी। हिंदू संस्कृति में भी ये बात आती है, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, यानी कलयुग के नर ऐसी करनी करे जो सतयुग के श्री नारायण बने। तो नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी, हर धर्म में ये बात कही हुई है कि सतयुग का वो पहला पहर कितना सुंदर था। उस दुनिया को अगर देखे, कितनी सात्विकता और सतोप्रधानता उस समय में थी कि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी और प्रकृति इतने पवित्र स्वरूप में थे, जहाँ के लिए कहा जाता कि शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी सुख शांति अहिंसा, इतनी समृद्धि उस दुनिया के अंदर थी, पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती जाती थी और कोई न कोई देवी या देवता का स्वरूप धारण कर लेती थी, और इस तरह से पूरी दैवी दुनिया थी। उस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक प्रीफिक्स लगता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण सूर्य नारायण इसीलिए कहा जाता है, जो सतयुग के राज्यकर्ता थे, जो सूर्य वंशी थे, इसलिए कहा नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो इतना सुंदर ये समय था, सात्विकता का ये समय था, सत्यता का समय, और जहाँ सत्यता है वहाँ एकता है। तो एकता संपन्न वो राज्य था, जहाँ एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ऐसी एकता की दुनिया थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा गया त्रेता युग। त्रेता माना जहाँ थोड़ी त्रुटि आ गई, स्वास्तिका का हाथ नीचे आता है राइट हैंड साइड पर ही, लेकिन जो 16 कला संपूर्ण देवताएं थे सीढ़ी नीचे उतरे 14 कलाधारी बने। पवित्रता सुख शांति समृद्धि इस दुनिया में भी है लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता नहीं है, इसलिए इसको त्रेता युग। यहाँ राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला श्री राम और श्री सीता का राज्य था? तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र। सूर्य नारायण कहा, रामचंद्र कहा, जो चंद्र वंश के राजा थे। इसीलिए दिखाते हैं कि श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, परंतु जहाँ से श्री राम आए वहाँ से दूसरा युग आरंभ हो गया, जिसको आज भी लोग याद करते हैं कि राम राजा राम प्रजा। राम सुखी था सारा संसार उस समय, है ना, जहाँ कोई भी प्रकार की अशुद्धि नहीं थी, हर प्रकार से सुखी थे। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने भी राम राज्य का स्वप्न देखा कि चलो सतयुग जितनी परफेक्शन न ले आ सके हम, लेकिन इस भारत में फिर भी राम राज्य तो बनाए। लेकिन वो भी एक स्वप्न ही रह गया। लेकिन तब कई बार लोगों के मन में ये विचार आता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ी, 16 कला से 14 कलाधारी बने। कोई कर्म करने वाली बात नहीं है, लेकिन संसार एक नियम में, एक सिद्धांत में चलता है। जैसे ही संसार का सिद्धांत है कि परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है, चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, समय परिवर्तनशील है। विज्ञान में थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड प्रिंसिपल भी यही कहता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसको डिफाइन किया गया है कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। हर चीज पहले सुव्यवस्थित होती है और फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। हर चीज पहले नई होती है, पुरानी अपने आप हो जाती है। मकान नया बनाओ, खंडर अपने आप बन जाता, खंडर बनाया नहीं जाता है। दुनिया का ये नियम है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है। इसी तरह संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी कितना दिन रहता है? एक घड़ी। दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की ओर यात्रा आरंभ हो जाती है, और अमावस्या में कितने दिन रहती है? एक घड़ी। फिर उसकी पूर्णमासी की ओर यात्रा चलती है। तब कहा परिवर्तन नित्य प्रक्रिया है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, और इस तरह ये संसार आगे बढ़ता जाता है। तो देवताओं ने कर्म किए ऐसे इसलिए सीढ़ी नीचे उतरे, ऐसा नहीं है। कुदरत के नियम अनुसार उनको भी जैसे जैसे जन्म लेते हैं देवताएं भी, तो हर जन्म में उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है, इसलिए 2 कला कम हो गई। और इस तरह से देखा जाए सृष्टि नाटक का तीसरा भाग आया, जिसको कहा द्वापुर, जहाँ स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। राइट हैंड माना राइटियसनेस, यानी राइटियसनेस यहाँ समाप्त हुई, और लेफ्ट हैंड माना अनराइटियसनेस यहाँ से आरंभ हुई। और जो स्वास्तिका का हाथ सतयुग में इस पोजीशन में था, वो द्वापर युग में जब आता है तो ये पोजीशन में आ गया, अर्थात मांगना आरंभ करते हैं। द्वापुर, द्वा माना 2, जहाँ से 2 पुर आरंभ हुए। सत्यता और एकता समाप्त हुई, 2 पुर आरंभ हुए, सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा, और वो मिक्सचरिटी के कारण असत्यता जैसे आने लगा तो दुख शांति मतभेद होने लगे, और उस मत भेद के कारण कलह क्लेश होने लगा। और दुख शांति आरंभ हुई है, तब कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो दुख इस संसार में क्यों आया? क्योंकि सुख के समय में किसी ने ईश्वर को याद ही नहीं किया, इसीलिए दुख आया। अगर ईश्वर को याद करते थे सत्ययुग और त्रेता युग में तो इस संसार में दुख क्यों आता था? लेकिन वहां याद नहीं किया क्योंकि खुद ही भगवान भगवती के स्वरूप में थे। उनको भगवान क्यों कहा गया? भगवान शब्द दो शब्द से बना, भागवान यानी भागवान, जिन्होंने भाग्य विधाता से श्रेष्ठ भाग्य आशीर्वाद रूप में प्राप्त किया था, ऐसी भागवान आत्माएं। लेकिन जब द्वापर युग में आते हैं तो वो भाग्य समाप्त हो जाता है, वो पूज्य अवस्था से पुजारी अवस्था आ गई। अब परमात्मा का सत्य परिचय तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ स्मृतियां हैं तो शिव की पूजा आरंभ होती है। लेकिन फिर जो देवी देवताएं होकर के गए थे वो भी श्रेष्ठ थे, तो उनके मंदिर बनाने शुरू किए, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के, श्री राम सीता के मंदिर बनाना आरंभ किया। जैसे आजकल की दुनिया के अंदर कई संतों के भी मंदिर बनते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भई ये संत तो इसी दुनिया का था, उसका मंदिर क्यों बना, तो क्या कहते? हमसे तो वो श्रेष्ठ है ना, इसीलिए पूजनीय है। ठीक इसी तरह द्वापर युग में जो हो गए उनसे श्रेष्ठ सत्ययुग और त्रेता युग के देवी देवताएं थे जो पूजनीय थे, तो उनकी स्मृति ताजा होने कारण उनके ही मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ कर दी। और इस तरह से द्वापर युग में भक्ति मार्ग आरंभ होता है। जो पूज्य देवी देवताएं थे मतभेद में जैसे आने लगे, मनुष्य चोले में आ गए तो पुजारी बन गए और वही देवी देवताओं के मंदिर बना करके पूजा करना आरंभ कर दिया। जो श्रेष्ठ स्थिति थी आत्मा की, आत्म अभिमानी की, वो देह अभिमान में आ गए और देह अभिमान में आने कारण कई प्रकार की बुराइयां जीवन में प्रवेश होने लगी। इसी युग में शास्त्र का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, रीत रसम रिवाज का निर्माण हुआ और इस तरह से भक्ति मार्ग आरंभ होता है, ये द्वापर युग में। अब जैसे दुख अशांति बढ़ती गई तो कहा दुख में सिमरण सब करे, तो परमात्मा को पुकारना आरंभ किया। अब परमात्मा का आने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसका आने का वक्त कब है? घोर अधर्म के समय पर। अभी तो अधर्म शुरू हुआ, जब शुरू हुआ तो उस समय तो परमात्मा का आने का वक्त नहीं होता है, तो उस समय संसार में कुछ महान आत्माओं का जन्म होता है जिन्होंने कहा हम परमात्मा के पैगंबर हैं, पैगाम लेकर के आए हैं। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। तो भारत से बाहर, भारत में तो भक्ति मार्ग आरंभ हुआ, लेकिन भारत से बाहर तीन मुख्य धर्म पिताएं आए जिन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। सबसे पहले आते हैं इब्राहिम, जिसने इस्लाम धर्म स्थापन किया। उसके बाद आते हैं महात्मा बुद्ध, जिसने बौद्ध धर्म स्थापन किया। इसके बाद आते हैं क्राइस्ट, जिसने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, हर एक ने यही काम भगवान का पैगाम लेकर के आए हैं। इसलिए हर धर्म के ओरिजिनल सिद्धांत अगर देखा जाए तो एक ही होगा, कोई धर्म पाप करना नहीं सिखाता, कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म गलत काम नहीं सिखाता, ओरिजिनल सिद्धांत एक जैसे। लेकिन जिस समाज में ये लोग गए थे उस समाज की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए, वो प्रचार अलग अलग हो गए। जहाँ इब्राहिम गए थे वहाँ के समाज की रचना कैसी थी, तो उस समाज में जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे। तब उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए जो आज भी उनके धर्म पुस्तक में लिखे हुए हैं। लेकिन अफसोस कि उस समाज के लोगों ने उसको कम समझा। इसी तरह जहाँ महात्मा बुद्ध गए थे उस समाज में उन्होंने क्या देखा, दो बातों को देखा कि मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है और मनुष्य के कर्म भ्रष्ट होने लगे। तब उसने इसी दो बातों पर प्रचार किया, दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, कर्म ही धर्म है। कर्म पर जोर दिया, अच्छे कर्म करो। लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने भी इस बात को समझा नहीं और इसीलिए दया नाम की चीज नहीं है। फार ईस्ट दुनिया में चले जाओ, चाइना जापान इस तरफ चले जाओ, महात्मा बुद्ध को मानने वाले बहुत मिलेंगे, गली गली में महात्मा बुद्ध के मंदिर मिलेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं। जैसे भारतवासी गीता को मानते, गीता की नहीं मानते, है ना? गीता को रोज घर में रखेंगे, पूजा करेंगे उसकी, लेकिन पूजा के लिए ही, उसके जीवन के अंदर एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह ये महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं है। आज भी आप कोई भी फार ईस्ट कंट्रीज में चले जाओ, क्या खाते ये लोग, चाइना में चले जाओ क्या खाते ये लोग, जो दुनिया में कोई नहीं खाते वो ये लोग खाते। आप सोचेंगे बेंजी को कैसे पता। कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, तो जैसे बम्बई की चौपाटी बहुत मशहूर है ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है। बम्बई की चौपाटी में बेलपुरी पानीपुरी आदि के स्टॉल लगे होते हैं, लेकिन हांगकांग की चौपाटी ऐसी है। एक बार हमारा कार्यक्रम था एक आइलैंड पर, गाड़ी को पार्क किया और बोट लेने तक हमको जाना था, तो 10 मिनट उस चौपाटी से गुजरना पड़ा। जब वहाँ का दृश्य देखा मैंने, मुझे कभी भूलता नहीं, तब मुझे महसूस हुआ कि महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस इस समाज के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। अरे एक स्टॉल पर देखा रंग बिरंगी सांप लटक रहे हैं, है ना, उसको तवे पर रख के फ्राई करके बड़े चाव से लोग खा रहे हैं। कहाँ देखा तो बिच्छू की सब्जी बनी जा रही थी, कहाँ देखा तो कुत्ते का गोश्त उबल रहा था, कहाँ देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। अरे क्या क्या खाते ये लोग, जो दुनिया में कोई नहीं खाते वो ये लोग खाते, है ना? प्राणी मात्र के प्रति दया भाव नहीं। और आजकल तो आपने सुना होगा ताइवान के अंदर मनुष्य के बच्चों को 10 दिन के 15 दिन के जो बच्चे होते हैं उसको होटल वालों को बेचा जाता है $2,000 में, और वो छोटे बच्चे को कैसे पकाया जाता है, बेक किया जाता है, और आज का मनुष्य कैसे हैवान बन करके अपने बच्चे को खाने में हिचकिचाता नहीं है, है ना? मानव अधिकार की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ भी, ये बच्चों के अधिकार कहाँ गए? कोई देश संयुक्त राष्ट्र संघ भी उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, कोई की बोलने की हिम्मत नहीं। मनुष्य कैसा बनता जा रहा है, इसलिए कहा महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, महात्मा बुद्ध की नहीं मानते। इसी तरह जहाँ क्राइस्ट गए थे वहाँ के समाज की व्यवस्था कैसी थी, उस समाज में क्राइस्ट ने भी दो बातों को देखा जिस पर उसने अपने प्रचार किए। पहली बात देखें कि मनुष्य मनुष्य से नफरत करने लगा है, और दूसरी बात देखें कि मनुष्य जीवन में इतना झूठ व्याप्त हो गया है। तब उसने अपने प्रचार में कहा, प्रेम ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने इस बात को नहीं समझा। प्रेम और सत्यता का संदेश देने वाले क्राइस्ट के साथ क्या किया? उसी को क्रॉस पर चढ़ा दिया। कितना नफरतपूर्ण व्यवहार किया और सारी दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते तो बाकी किसको बख्शेंगे। और इसलिए जहां पर भी ये दुनिया में चले गए, गए थे व्यापार के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद नफरत के बीज बोए, झूठ का इस्तेमाल किया, राजाओं को राजाओं से लड़ाया, राजाओं को प्रजा से दूर किया और पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। भारत में भी आए थे तो व्यापार के लिए आए थे, लेकिन क्या किया यहाँ पर? पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया और नफरत के बीज बोए, भाई भाई को अलग किया, देश को वापस देने समय क्या किया? देश का दो हिस्सा कर दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर। नफरत के बीज ऐसे बोए जो भाई भाई लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है मालूम नहीं। कारण हो तब तो निवारण हो, इसीलिए इतने सालों के बाद भी समाधान ही नहीं हो रहा है। भाई भाई लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है भाई पता ही नहीं है। खाली भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, आज दुनिया के अंदर 350 लड़ाइयां चल रही है, उन्हीं देश की बॉर्डर्स पर चल रही है जिस देश के दो टुकड़े हुए, कहीं नॉर्थ साउथ हो गया, कहीं ईस्ट वेस्ट हो गया। भाई भाई लड़ रहा है, नफरत के बीज किसने बोए, ये झूठ का इस्तेमाल किसने किया, और इस तरह से ये दुनिया आगे बढ़ती गई। और ये काल चक्र का चौथा हिस्सा आया है जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहां हर घर के अंदर कलह क्लेश आरंभ हो गया, हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त करती, अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, हर प्रकार की अति। इसीलिए इसी दुनिया को दूसरे शब्द में कहा जाता रावण राज्य। जहाँ राम राज्य था वहाँ रावण राज्य नहीं था, वहाँ सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। रावण राज्य अब है जब राम राज्य नहीं है। इसको रावण राज्य क्यों कहा? तो रावण राज्य इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि रावण जो था वो कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था इस दुनिया में, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास। रावण जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं, शस्त्र थे उसके पास, है ना, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, ये सारे अस्त्र उसको प्राप्त थे तपस्या के बल। रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, शिव भक्त था और तभी उसने ये दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे। और रावण जैसा धनवान भी कोई नहीं मिलेगा, पूरी सोने की लंका थी। यानी जीवन में जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ बल बुद्धि और भक्ति, चारों ही रावण के पास। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि दो बातों की कमजोरी उसके जीवन में आ गई थी, अहंकार चरम सीमा पर था और चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई थी, अनैतिकता, इसलिए उसका सर्वनाश हुआ। आज की दुनिया को रावण राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई प्राणी नहीं। विज्ञान की शक्ति है। विज्ञान आज चरम सीमा पर के हवा में उड़ने लगा है, पानी के नीचे तैरने लगा है। जैसे वो रावण के समय में दिखाते कि आकाश मार्ग से आया, कभी नीचे जल के मार्ग से आया, तो यही तो आज मनुष्य भी आकाश मार्ग से और नीचे जल के मार्ग से जा रहा है। मनुष्य जैसा शक्तिशाली भी कोई प्राणी नहीं। आज मनुष्य के पास मिसाइल पावर है, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, पृथ्वी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, उसको भी प्राप्त है, है ना। मिसाइल्स के नाम क्या है? पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मास्त्र मिसाइल। तो ये मिसाइल नहीं तो क्या है? यही तो दिव्य अस्त्र है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली गली में मंदिर है, गली गली में भक्ति कर रहा है, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं। इतना पॉम्प एंड ग्लैमर की ये दुनिया है। इसलिए कहा यही तो रावण राज्य है। आज मनुष्य के पास भी सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी मनुष्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्योंकि आज मनुष्य जीवन में भी दो बातों की कमी हो गई है। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर है और चरित्र भ्रष्टता उसके जीवन में आ गई है, अनैतिकता आ गई। तो रावण राज्य नहीं तो क्या है? इसलिए कहा कि आज की दुनिया रावण राज्य है। जब राम राज्य था तब रावण राज्य नहीं था, जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं। रावण के पास कहा जाता है इतनी शक्ति होती थी कि सारे देवताओं को उसने अपनी चारपाई के साथ बांध के रखे थे। रावण के महल में कहा जाता है कि इंद्र पानी भरता था, वायु देवता उसको पंखा हिलाता था, और साथ ही साथ अग्नि देवता खाना बनाता था। क्या है? वायु देवता खाना पकाता था, है ना। तो आज की दुनिया भी रावण राज्य नहीं तो क्या है? कि हमने भी ये देवताओं को अपने घर में बांध के रखे हैं कि नहीं? घर नल का खोलो तो इंद्र देवता पानी भरता है, गैस चालू करो तो अग्नि देवता खाना पकाता है। अभी कौन सा चूल्हा जलाना पड़ता है? बस बटन के अंदर सबको बंद करके रख दिया है। और फैन चालू करो, एसी चालू करो तो वायु देवता पंखा हिलाता है। इसलिए कहा कि मनुष्य ने भी आज प्रकृति के सभी देवताओं को बांध कर अपने घर में रख दिए। तो रावण राज्य नहीं तो क्या है? यही रावण राज्य, जहां हर इंसान बंधन महसूस करता है अपने जीवन में। किसी को व्यसनों का बंधन है, किसी को बुरी आदतों का बंधन है, किसी को बुरे स्वभाव का बंधन है, किसी के बुरे संस्कारों का बंधन है। जहां हर इंसान गुलाम हो गया है, खाली अपनी कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं लेकिन पांच विकारों का गुलाम हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, सारे विकारों का गुलाम होने के कारण उसकी शक्लें तो देखो कितनी विकृत हो गई। और ऐसी विकृति जब आ जाती है, जब न खुद का परिचय है, न परमात्मा कौन है उसका परिचय है, तो परमात्मा को भी कहाँ ढूंढ रहा है? कहाँ देखो तो अग्नि की पूजा कर रहा है, कहाँ देखो तो वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहाँ देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहाँ देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है, किस किस की पूजा करने लग गया? न आत्मा का ज्ञान है, न परमात्मा का ज्ञान है। जब ऐसी हालत हो जाती है तो अभी भी कहेंगे कि कलयुग बच्चा है, कई लोगों को कहते नहीं नहीं अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी तो 4,32,000 साल पड़ा है। अब सोचने की बात है, 4,32,000 साल पड़ा हो। वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कहां वो देवी देवता के स्वरूप में था और आज हैवान होता जा रहा है। दूसरा गीत भी याद आता है मुझे कि जब कहा कवि प्रदीप जी का वो दूसरा गीत कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, हाँ ऐसा कलयुग आएगा जहाँ क्या नहीं होगा। और वो सारे कलयुग की अंतिम निशानियां जो दिखाई है वो तो प्रैक्टिकल में इस समय हम देख रहे हैं। अभी 4,32,000 साल कैसे हो सकते हैं? जो अति धर्म ग्लानी का लक्षण है ये तो सब प्रैक्टिकल में इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो अब कोई बच्चा नहीं है, अब थोड़ा सा बचा है, कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है। अब कोई ज्यादा समय चलने वाली हालत में ये सृष्टि नहीं है, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जिस प्रकार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे हैं, कहा जाता कि ओजोन में पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना होल हो गया है, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पृथ्वी पर आ रही है और जिस कारण ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है जिसका कोई इलाज नहीं, ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो मनुष्य जीवित कैसे रहेगा। वर्तमान समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को पूछा गया कि जिस तरह मनुष्य की आबादी बढ़ रही है, ये आबादी को जीवित रहने के लिए कितने परसेंट में फॉरेस्ट होने चाहिए, तो कहा कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। उनको पूछा गया कितने फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, 14%, प्रैक्टिकल में 11%, और ये भी अगर 9% हो गए तो मनुष्य जीवन असंभव है। अब 11 से 9 होने में, 2% कम होने में 4,32,000 साल चाहिए? नहीं। हर साल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के दुनिया में किसी न किसी देश में कॉन्फ्रेंस होती है। इस साल फरवरी में दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां सारी दुनिया के साइंटिस्ट लोग एकत्रित हुए थे, और उस कॉन्फ्रेंस में जो साइंटिस्ट लोग बता रहे थे कि पृथ्वी का तापमान जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, बर्फ पिघलने लगा है, और जो प्राकृतिक असंतुलन आ रहा है, अगर ये दुनिया का टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ जाए, खाली 4 डिग्री, तो मनुष्य को पता नहीं कि किस प्रकार का महाविनाश सर्ज सकता है। अब 4 डिग्री बढ़ने में कितना, 4,32,000 साल लगेंगे। इसलिए कहा अभी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति के कारण बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे, ज्वालामुखी फट रहे, सुनामी लहरें उठ रही है, चक्रवात तूफान आ रहे, ये परिवर्तन की ही तो निशानी है। और जो मिसाइल्स बनाए गए हैं वो रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना, सारे मिसाइल्स कंप्यूटराइज कंट्रोल है, एक बटन दबाने की देरी पर है और मिसाइल्स छूटना आरंभ हो जाएंगे। अब सोचने की बात है कि जो व्यक्ति सारा समय बैठ के कंप्यूटर देख रहा है, मिसाइल कहीं से आया नहीं आया, आया नहीं आया, और घर में एक बार झगड़ा हुआ, टेंशन हो गया उसको, और वो आएगा वहां काम पर, सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सब, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी? 4,32,000 साल लगेंगे? नहीं, मनुष्य का टेंशन इतना बढ़ता जा रहा है कि कोई भी मानसिक बीमारी सहज स्वाभाविक उसको अटैक कर लेती है, और उसमें वो क्या कर बैठेगा किसी को पता नहीं है। तो ऐसे समय पर ही जो भगवान ने वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि परमात्मा इस संसार में आते, संसार में भी, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हुए अब यही कहते, अब चलो बच्चे वापस घर चलो, बहुत समय हो गया इस दुनिया में खेल करते हुए, अब वापस चलना है, घर चलना है, हम रिटर्न जर्नी पर है ना? और ऐसे समय पर भगवान भी आकर सिर्फ दो बातें कहते हैं, लेकिन अफसोस आज के समाज के मनुष्य भी ये दो बातों को समझ नहीं पाता है। जैसे वो धर्म पिता आए, दो दो बातें कही लेकिन नहीं समझा, ऐसे आज मनुष्य भी वो दो बातों को नहीं समझ पाता है। क्या कहते हैं भगवान, वो दो बातें कौन सी कहते हैं? दो बातें यही कहते हैं। पहली बात कहते हैं आत्म शुद्धिकरण करो, योगी बनो, पवित्र बनो। गीता में भगवान ने अर्जुन को भी बार बार यही कहा, तू योग कर, योगी बन, योगी बनो, पवित्र बनो, काम महाशत्रु है। यही भगवान ने अर्जुन को भी कहा। आज भगवान आकर के फिर से यही दो बात कह रहे, लेकिन अफसोस आज के समाज के लोग भी क्या कहते हैं, अरे बहन जी सारे लोग पवित्र हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमने थोड़ी लिया है, वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है, हम क्यों चिंता करें? एक बार हमारा कार्यक्रम था एक शहर में, सप्ताह का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा सप्ताह का कार्यक्रम चला, काफी लोग आते थे सुनने के लिए। अंतिम दिन जब था तो एक बुजुर्ग भाई खड़े हुए कि मैं कुछ कहना चाहता। हमने कहा जरूर आइए। स्टेज पर आए, माइक लिया उन्होंने और कहा कि पहली बार जीवन में ये ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है उसको मैंने समझा, पहली बार उनका प्रवचन सुना। 8 दिन तक हम उनसे दूर भागते रहे। हमने कहा ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण आप दूर भागते रहे? तो कहा ब्रह्मा कुमारियों के विषय में समाज में बहुत गलत फहमियां फैली हुई है, इसलिए दूर भागते रहे। हमने कहा ऐसी क्या बात है? तो कहा ब्रह्मा कुमारियों के लिए यही कहा जाता है कि ये भाई बहन बना देती है ना? आप लोगों को भी कहा होगा वहां जा रहे हैं ठीक ठाक वापस आना, है ना? अरे ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसको भाई बहन बनाने की? हम किसी को नहीं बनाते हैं, हम किसी को भाई बहन नहीं बनाते। लेकिन आश्चर्य मुझे एक बात का लगा ये सुनने के बाद कि आप सभी मंदिर तो जरूर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मंदिर में एक प्रार्थना आप सभी ने गाई होगी, कौन सी प्रार्थना? तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये प्रार्थना गाई है या नहीं गाई है? गाई है कि नहीं गाई है? गाई है ना? कि सिर्फ भाइयों ने गाई, बहनों ने कुछ और गाया कि मेरे पति के मात पिता तो मेरे सास ससुर, कभी कहा भगवान को? जब आप ये प्रार्थना गा रहे थे तब आप कौन बन गए थे? कौन बन गए थे? तो ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी क्या? तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें? हमने तो ऐसी कोई बात नहीं सिखाई। इसीलिए कहा कई चीजें हम अज्ञानता के कारण करते रहे और मालूम ही नहीं कि क्यों करते। वैसे समय भी अभी संकेत दे रहा है क्या संकेत दे रहा है? आज दुनिया में नंबर वन पर जो बीमारी चल रही है, कौन सी चल रही है? एड्स की बीमारी, जिसका कोई इलाज नहीं। यानी समय भी संकेत दे रहा है कि आत्म संयम को धारण करो, लेकिन उसके बावजूद भी जब मनुष्य विपरीत दिशा में चलता है तो समय का शिकार तो अवश्य बनना ही है। उसके लिए कोई उसको हेल्प नहीं कर सकता है, कोई मदद नहीं कर सकता है। न्यूज़पेपर तो आप सभी पढ़ते हैं ना, एक खबर हर रोज पढ़ते हैं। कौन सी? हर न्यूज़पेपर में आती है, कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य, ये पढ़ते हैं ना। प्रैक्टिकल समाज में तो कितने किस्से होते होंगे, न्यूज़पेपर में एक दो छपते हैं। जब आप ये खबर पढ़ते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। उस समय यही कहते हैं कि कैसा राक्षस पना है मनुष्य के अंदर, कैसी हैवान्यता आ गई है। कई लोग कहते हैं अगर यही नेचुरल पद्धति है संसार को चलाने की, तो उसको राक्षस पना हैवान्यत क्यों कहा? शास्त्रों में भी दिखाया है कि रावण जैसा रावण इतना शक्तिशाली था, सीता जी को सम्मोहित करके ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा। अब रावण जो इतना शक्तिशाली, उसके बाद सीता जी को स्पर्श तक नहीं कर सका, सीता जी के पास अपने आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका जो उठा करके सीता जी ने रावण को चैलेंज कर दिया कि हे रावण, इस घास के तिनके से आगे तूने कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है मेरी। कौन सी शक्ति थी उसके पास? कौन सी शक्ति थी? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी। और जिस ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति का कारण रावण भी उसको स्पर्श नहीं कर सका। आज की दुनिया में भी आत्मरक्षा अगर चाहते हैं, तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, किसी की ताकत नहीं। कई लोग हमें पूछते हैं ऐसे समय में भगवान रक्षा क्यों नहीं करता है? भगवान रक्षा करना चाहता है, इसीलिए कह रहा है। कैसे? भगवान को क्या कहते? जानी जाननहार है, सब कुछ जानता है, यही कहते हैं ना। भगवान सब कुछ जानता है ना। क्या जानता है? आने वाले समय को जानता है कि आने वाला समय कौन सा है, और आने वाले समय में ऐसा दुष्कृत्य कितना होगा, ये भगवान जानता है। समय को श्राप है, और इसीलिए जब समय श्रापित है और इतने दुष्कर्म होने वाले हैं, भगवान मदद करना चाहता है, लेकिन भगवान परम पवित्र है, तो परम पवित्र की मदद को स्वीकार करने की पात्रता तो चाहिए, इसलिए भगवान कहता है। जैसे दुनिया में कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है, ऑर्डिनरी बर्तन होता है तो वो दूध इतना पावरफुल होता है कि बर्तन को फाड़ देता है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है। ऐसे परम पवित्र परमात्मा की मदद को स्वीकार करने की अगर पात्रता नहीं है फाड़ देगा, इतनी शक्ति है, इसीलिए उसकी मदद को स्वीकार करने की पात्रता चाहिए। तभी भगवान कह रहा है कि अगर आत्मरक्षा चाहते हैं ये कलयुग के अंदर, तो पवित्र बनो, योगी बनो। कई लोग कहते ब्रह्मा कुमारियां जो नेचुरल प्रक्रिया है उससे विपरीत दिशा में क्यों ले जाती है, ये नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। अगर नेचुरल प्रक्रिया होती थी तो गीता के अंदर भगवान ये क्यों कहते थे, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, तुम जीतो इसको। नेचुरल प्रक्रिया नहीं है तभी तो कहते हैं। तब कई लोग कहते फिर दुनिया कैसे चलेगी, भगवान के पास सारा प्लानिंग है दुनिया को चलाने के लिए। आज से 2000 साल पहले यीशु का जन्म कैसे हुआ था, जीसस का जन्म कैसे हुआ था? अगर एक वर्जिन मेरी, कुमारी मेरी, बिना किसी भोग बल के जीसस को जन्म दे सकती है, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। मदर मेरी के रूप में आज भी उसको पूजते हैं। यानी ये बताता है कि 2000 साल पहले भी ऐसा समय नहीं था। हमारा शास्त्र ये बात बताते हैं कि पांडव और कौरवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडव धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दृष्टि के बल से उत्पत्ति हुई थी। तभी तो धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ था। श्री राम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यज्ञ से उत्पत्ति हुई थी। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी, योगेश्वर जिसको कहते योग बल से उत्पत्ति हुई थी। यानी संसार के अंदर समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य बदलता रहा है। ये तो कलयुग के अंदर जब मनुष्य आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, बाकी सदा का लिए संसार भोग बल से नहीं चलता है। ये विकृत पद्धति है, इसीलिए भगवान ने गीता में कहा काम महाशत्रु है। इसीलिए इसको जीतना है, और जितनी हमारी पात्रता विकसित होगी उतना ही परमात्मा की मदद को स्वीकार करना आसान हो जाएगा। तो ये दुनिया कैसे चलेगी, कई लोग पूछते हैं कि आने वाले समय में दुनिया कैसे चलेगी। भगवान के पास पूरा प्लानिंग है दुनिया को चलाने का, और एक पवित्र विधि से दुनिया चलती है। क्या सबूत है कि पवित्र विधि से चलती है? भगवान जानते थे ये कलयुगी मनुष्य ना हर बात में सबूत जरूर मांगेंगे, इसलिए आज भी प्रकृति में एक पक्षी को रखा है जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है, मोर का पक्षी पवित्र विधि से कलयुग में भी उत्पत्ति करता है। अगर एक पक्षी कर सकता है तो मनुष्य नहीं कर सकते? इसीलिए श्री कृष्ण के ताज में मोर का पंख लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया है, लेकिन श्री कृष्ण ने मोर का पंख इसीलिए लगाया है कि सम्मान किया है कि जितना परम पवित्र श्री कृष्ण है उतना ही पवित्र ये पक्षी है जो कलयुग में भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने ताज में लगा करके उसको सम्मानित किया है, उसको सम्मान दिया है। आज तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि मेडिकल साइंस भी ये प्रमाणित करता है कि भोग बल की आवश्यकता नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति के लिए नारी अपने आप में ही सक्षम है। इतनी परफेक्ट क्रिएशन है परमात्मा की कि अपने आप में वो सक्षम है उत्पत्ति करने के लिए। ये विज्ञान भी अभी मानने लगा है, लेकिन अब कहेंगे किस्मत आपके हाथ में। किस्मत, किस्मत कैसे बनती है पता है? किस्मत, आपको यहाँ आने के लिए ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने कई बार निमंत्रण दिया होगा, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार आपने क्या कहा था? अरे बहन जी, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे, यही कहा था ना। अभी जो आए किसकी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की? ऊपर वाले की। अब यहाँ से जाएंगे तो किसकी मर्जी पर चलेंगे? हाँ, अब किस्मत आपके हाथ में, किस्मत पर चलना है, परमात्मा की मत पर चलना है और जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। या दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहे, किस्मत पर चलना है, उसी से किस्मत बनेगी या बिगड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी
कि आप सभी भाग्यशाली। कैसे? महान भाग्यशाली हो। वो नारद जी की बात याद आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा कि भगवान के हाथ में डायरी है। पूछा, भगवान ये डायरी कैसी? तो भगवान ने कहा, इसमें कुछ नाम लिखे हैं। नारद जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भगत मुझे बहुत याद करते। नारद जी बड़े खुश हुए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर लिखा होगा, मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करते हैं। भगवान भी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हाँ तेरा नाम सबसे पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई। कहा, भगवान मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ? तो भगवान ने दे दिया, देख लो। खुद का नाम सबसे पहला नंबर था, बड़ा खुश हुआ। आगे देखने लगा, किस किस का नाम भगवान ने लिखा है। ढूंढने लगा, इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है? तो देखा, सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। घूमते घूमते पहुंचे तो देखा, हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे भगवान का नाम ले रहे थे। तो वहां जाकर के नारद जी ने कहा, ये सारा ढोंग बंद करो। कहा, क्यों? नारद जी ने कहा, अभी मैं भगवान की खास डायरी देख करके आया हूँ, जिसमें भगवान ने उनके नाम लिखे हैं जो उनको बहुत याद करते हैं, और पता है आपका नाम तो था ही नहीं। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी थे। हनुमान जी ने कहा, मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता, मैं तो उसके दिल में रहता हूँ। नारद जी क्या कहते, वहां से फिर चले घूमते घूमते, फिर एक दिन भगवान के पास पहुंच गए तो देखा भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा, ये डायरी तो अलग लग रही है। पूछा, भगवान ये कौन सी डायरी है? तो भगवान ने कहा, ये मेरी पर्सनल डायरी है। तो सोचा, पर्सनल डायरी है, पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो भगवान ने कहा, इसमें भी कुछ नाम लिखे। किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे हैं जिसको मैं बहुत याद करता। कहा, आप भी याद करते हैं? कहते हाँ। कहा, किसको याद करते? मैं डायरी देखूं? तो कहा, देख लो। तो देखा, उसमें हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। तो भाग्यशाली कौन? जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो? जिसको भगवान याद करे वो। तो आप सबको भी भगवान ने याद किया तब यहाँ पहुँचे हो, इसलिए आप सबका नाम भी, आप सबका नाम भी कौन सी डायरी में? पर्सनल डायरी में। सबका महान भाग्यशाली हो। लेकिन आपके साथ आने वाले और भी थे, कई लोगों को लास्ट मोमेंट कैंसिल करना पड़ा, और आप में से कई ऐसे भी होंगे दूसरे के जगह पर आ गए, क्योंकि भगवान ने याद किया था ना, इसलिए दूसरे की टिकट पर पहुंच गए। लेकिन अब यहाँ से जाने के बाद वो नारद वाला काम नहीं करना कि जो नहीं पहुंचे हैं उसको कहो कि तुम तो भाग्यशाली नहीं हो, भगवान ने तुझे याद ही नहीं किया है। नहीं, पुरुषार्थ ये करना, वो भी पहुंच जाए यहाँ पर। लेकिन जैसे कहा, भगवान जो नई दुनिया रचते हैं ना, सतयुग की रचना करते हैं, तो वो इलेक्शन से नहीं करते, सिलेक्शन से करते। तो आप सभी को सिलेक्ट तो कर दिया उस नई दुनिया में चलने के लिए। सतयुग में ये दुनिया की पूरी पॉपुलेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर वहां पर भी इतनी आत्मा हो तो वहां पर भी कलयुग हो जाए। इसीलिए वहां थोड़ी आत्माएं होती है, सिर्फ 9 लाख आत्माएं होंगी पूरे संसार के अंदर, सतयुग के अंदर। तभी तो सुख शांति समृद्धि सब कुछ होता है। तो आपको सिलेक्शन में तो ले लिया, अभी इस सिलेक्शन में रहना है या निकल जाना है, ये किसकी मर्जी होगी? ये आपकी मर्जी होगी। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु तू मुझे भी सिलेक्ट करके तो देखता था, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ। तो सिलेक्शन में तो उसने ले लिया, लेकिन अब ये सिलेक्शन में रहना है निकल जाना है ये आपकी मर्जी। इसलिए कहा जाता है आइदर यू आर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और आइदर यू आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। या तो समस्या स्वरूप है या समाधान स्वरूप है, आपको किस तरफ जाना है। अब आपको ला करके ऐसे दो राहों पर खड़ा कर दिया है, एक राह है सतयुग की ओर जाने वाली, दूसरी राह है समय का शिकार बनने वाली। अब आपको किस राह पर जाना है ये आपको डिसाइड करना है, और आप अपने भाग्य के निर्माता हो। इसीलिए अब आपकी मर्जी के आपको किसके कहने पर चलना है, ठीक है। तो ये है समय का संकेत, और समय के संकेत को समझते हुए अगर परिवर्तन को अपना लिया तो उसको कहेंगे समझदार। समय के संकेत को समझते हुए भी अगर विपरीत दिशा में चलते रहे तो उसको क्या कहेंगे। तो ये था काल चक्र का गुह्य रहस्य, समय की कहानी और समय की मांग, और उस मांग के हिसाब से अभी प्रत्युत्तर देना है, ठीक है। ओम शांति।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। Thank you.